4 भावात्मक शिक्षा।
दूरदर्शन की सहायता से भावात्मक शिक्षा प्रभावशाली ढंग से संभव हो सकती है। विभिन्न उपन्यासों, कहानियों, कविताओं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम जैसे रामायण, महाभारत, भारत की खोज, विश्व की खोज, ऐसे कार्यक्रमों से बच्चों की भावात्मक शिक्षा में अभिवृद्धि हुई है। इसी प्रकार इस माध्यम से मानवता, राष्ट्रीय प्रेम, सहानुभूति आदि भावों की शिक्षा संभव हो चुकी है। पंजाब कश्मीर में कैसे लोग मारे जा रहे हैं, धार्मिक असहिष्णुता से कितने जघन्य अपराध किए जा रहे हैं, प्राकृतिक आपदाओं से मानव कैसे त्रस्त हो रहा है, इन बातों का दर्शन करा के लोगों का हृदय परिवर्तन कराने का प्रयत्न किया जाता है। चिकित्सालय, अनाथालय, गरीबी, शरणार्थियों की स्थिति देखकर उनका हृदय द्रवित हो जाता है, वह साधारण कक्षा में संभव नहीं हो सकता। 5 शिक्षा में समानता का अवसर प्रदान करने के लिए। संसार में अनेक देशों में शिक्षा के लिए समान अवसर प्रदान करने की समस्या अहम है। दूरदर्शन इस समस्या का निराकरण करता है। दूरदर्शन के कार्यक्रम कक्षा में समस्त बच्चों, अमीर गरीब, आदिवासी, शहरी ग्रामीण, काले कारे गोरे, सबको समान रूप से दिखाए जाते हैं। इनमें भेदभाव नहीं रहता है। उत्पादकता एवं कार्य कुशलता में वृद्धि। शिक्षा से उत्पादकता का अर्थ यह नहीं कि कम अध्यापकों द्वारा अधिक शिक्षा प्रदान करना, बल्कि उत्पादन से तात्पर्य प्रबुद्ध व्यक्तियों, सुसंस्कृत नागरिकों, उत्तम पाठ्यक्रम, प्रभावशाली शिक्षण विधि, उच्च कोटि के ज्ञानात्मक एवं भावनात्मक अध्ययन प्रदान करना। दूरदर्शन के प्रसारण इस प्रकार के कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। ऐसे कार्यक्रम की संभावना कक्षा शिक्षण में दूरदर्शन के कार्यक्रम से अच्छे तालमेल से संभव हो सकती है। यह कार्य कुशलता में वृद्धि करता है, परंतु अध्यापक की स्थानापन्न नहीं हो सकता। एन हेनमोक के अनुसार दूरदर्शन के निम्नलिखित शैक्षिक उपयोग हैं। दृश्य एवं विशिष्ट तकनीकी के रूप में छात्रों के सृजनात्मक सहयोग के विकास के रूप में, छात्रों को प्रेरित करने की दिशा में, कठिनाई से उपलब्ध शिक्षण साधनों को उपलब्ध कराने के क्षेत्र में, अधिकांश छात्रों को उच्च स्तरीय शिक्षण प्रदान करने के करना, छात्रों को जो विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं प्राप्त कर सकते उन्हें शैक्षिक अवसर प्रदान करना, साक्षरता कार्यक्रमों के लिए अत्यंत लाभप्रद, औद्योगिक श्रमिकों एवं किसानों के लिए विशिष्ट कार्यक्रम का प्रदर्शन, अध्यापकों के लिए सेवाकालीन कार्यक्रम के प्रसारण के लिए, शिक्षक शिक्षा में प्रदर्शन पाठ के लिए, उन प्रयोग प्रदर्शनों के लिए जिन्हें कक्षा में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है, विभिन्न शिक्षण साधनों के समायोजन से विभिन्न विषयों में स्तरीय शिक्षण के लिए, प्रयोग विधि तथा सावधानियां। इसका प्रयोग निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। 1 दूरदर्शन द्वारा कुछ शैक्षिक कार्यक्रम प्रदर्शित किए जाते हैं और दृष्टा उनका अपने आप में ज्ञान प्राप्त करता है। अनेक कार्यक्रमों में अध्यापक कक्षा के लिए आने वाले कार्यक्रम के लिए तैयार करता है, जिसके लिए विद्यार्थियों से प्रश्न या वार्तालाप करता है या पूर्व में पढ़ाए गए प्रत्ययों एवं शर्तों तथा विचारों पर चर्चा करता है। दूरदर्शन कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। बीच बीच में अध्यापक कक्षा में व्याख्या, उदाहरण आदि के द्वारा विषय वस्तु को बोधगम्य बनाता है। ऐसा तभी संभव होगा जब टेप पर कार्यक्रम लिखकर सुनाया जाए। कार्यक्रम देखने के पश्चात अनेक शैक्षणिक तकनीकों का प्रयोग किया जा सकता है। कक्षा का वातावरण भी दूरदर्शन के प्रयोग के प्रभाव को निश्चित करता है। दूरदर्शन सेट अच्छी दिशा में होना चाहिए, जिससे प्रसारण कोटि का हो। इसे ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां से सभी विद्यार्थी आसानी से देख सकें। दूरदर्शन प्रसारण का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके प्रसारण कक्षा कार्य के बाद, दोपहर के भोजन के पहले या बाद में या सायंकाल उपयुक्त है। जिस दिन जिस कक्षा में जिस विषय का प्रसारण हो, उस दिन उसके छात्रों को रोकथाम यथा स्थान 5 मिनट पूर्व ही बैठा देना चाहिए। इसके लिए विद्यालय समय सारणी में टेलीविजन द्वारा प्रसारित पाठों को देखने सुनने की व्यवस्था हो। 4 शोध परिणामों के आधार पर कहा जा सकता है कि विद्यार्थियों के का अधिगम दूरदर्शन कार्यक्रम का कक्षा शिक्षण में प्रयोग पर आधारित है। इसका कक्षा में कितना, किस प्रकार, किस महत्व के साथ प्रयोग होता है, इन बातों का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। प्रसारण के समय अध्यापक कक्षा से बाहर जाता है या उपेक्षा करता है तो इसका बुरा प्रभाव होता है। इसलिए कार्यक्रम प्रसारण में विद्यार्थियों एवं अध्यापक के मध्य उचित समन्वय होना चाहिए। 5 कार्यक्रम को अच्छा बनाने के लिए जिन बातों की अपेक्षा होती है उन पहलुओं का दूरदर्शन के कार्यक्रम में समावेश होना चाहिए। पृष्ठभूमि का संगीत कार्यक्रम की गति क्रम प्रारूप एवं आकर्षक तत्वों का समुचित प्रयोग किया जाना चाहिए। शिक्षकों को प्रसारित सामग्री पर छात्रों से क्रमबद्ध रूप से में प्रश्न पूछने चाहिए और यह देखना चाहिए कि छात्र कितना समझे हैं, फिर आगे उसके आधार पर शिक्षण का को नियोजित करना चाहिए। अध्यापक को क्या करना चाहिए? दूरदर्शन के कार्यक्रम की स्वीकृत ग्राह्यता अध्यापकों के ऊपर निर्भर करती है। दूरदर्शन के कार्यक्रम का प्रभावशाली ढंग से उपयोग करने के लिए अध्यापकों को प्रशिक्षित करना चाहिए, अन्यथा वे अध्यापक निर्देशानुसार उपयोग करते हैं, कभी कभी विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया से भी प्रभावित होते हैं। विद्यार्थियों को आकर्षित करने वाले कार्यक्रम अपने में कमजोर होते हुए भी अच्छे माने जाते हैं। अध्यापक अभिवृत्ति में भिन्न होते हैं, कुछ दूरदर्शन के प्रति अच्छा भाव रखते हैं, दूसरे नकारात्मक। जब अध्यापकों को लगता है कि दूरदर्शन उनके स्थानापन्न के लिए लाया गया है तो वे उसका प्रयोग उपेक्षा भाव से करते हैं। यदि उसका प्रयोग शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक के रूप में किया जाता है तो उत्साह से उनको स्वीकार करते हैं। अध्यापकों को दिए गए संसाधनों का प्रभाव कार्यक्रम पर पड़ता है, विद्यार्थी अध्यापकों से प्रभावित होते हैं। कार्यक्रम बच्चों के विकास स्तर के अनुरूप होना चाहिए तथा विषय वस्तु को बुद्धिमत्ता पूर्वक प्रस्तुत करना चाहिए जिससे दर्शकों को अच्छा लगे। यद्यपि परिवार में प्रदर्शित कार्यक्रम बच्चे ध्यान से नहीं देखते, परंतु विद्यालय में अध्यापक के साथ कार्यक्रम देखना महत्वपूर्ण या प्रभावपूर्ण है। अध्यापक को कार्यक्रम पर ध्यान देना चाहिए, अन्यथा कार्यक्रम निष्प्रभावी हो जाते हैं। कक्षा में कोई भी विद्यार्थी इधर उधर करता है तो पूरी कक्षा का ध्यान खंडित होता है। दूरदर्शन के शैक्षिक कार्यक्रम। दूरदर्शन कार्यक्रमों का वर्गीकरण उनके उपयोग के आधार पर किया गया है। शैक्षिक दूरदर्शन। दूरदर्शन कार्यक्रम सामान्य रूप से शैक्षिक समस्याओं से संबंधित हो तो उसे शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम कहते हैं, यथा स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जीवन स्तर के उन्नयन संबंधी कार्यक्रम, सामान्य ज्ञान संवर्धन कार्यक्रम। शैक्षणिक दूरदर्शन। शैक्षणिक दूरदर्शन कार्यक्रम पाठ्यक्रम से संबंधित नियोजित तथा क्रमबद्ध दूरदर्शन कार्यक्रमों की श्रृंखला को कहते हैं। शैक्षणिक दूरदर्शन कार्यक्रम वीडियो पर व्यावसायिक रूप से बंद परिपथ दूरदर्शन पर उपलब्ध है। इनके उपयोग के आधार पर निम्न प्रकार से देख सकते हैं। पूर्ण दूरदर्शन शिक्षण। इस प्रकार के दूरदर्शन शिक्षण में दूरदर्शन कार्यक्रम पूरा शिक्षण होता है। अध्यापक कक्षा की क्रियाएं ही संपन्न करता है। वह दूरदर्शन से प्राप्त अन्य साधनों से प्राप्त ज्ञान के आधार पर छात्रों की समस्या को हल करता है। पूरक दूरदर्शन शिक्षण। इस प्रकार दूरदर्शन कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षण के अस्पष्ट स्थलों का स्पष्टीकरण या उच्चतर ज्ञान का प्रदान करना है। यह कार्यक्रम सप्ताह में एक बार या पाक्षिक रूप से प्रसारित होते हैं। इसका उद्देश्य शिक्षण नहीं अपितु कक्षा शिक्षण में पूरक सामग्री उपलब्ध कराना है। दूरदर्शन शिक्षण साधन के रूप में यह कार्यक्रम छात्रों को अच्छे ज्ञान ग्रहण करने का अवसर प्रदान करते हैं। जैसे बड़ी कक्षा में विज्ञान के पाठों एवं मेडिकल में किसी गंभीर सर्जरी की प्रक्रिया को दिखाने में दूरदर्शन मुख्य शिक्षण साधन के रूप में। इस प्रकार के दूरदर्शन कार्यक्रमों में अधिकांश शिक्षण दूरदर्शन द्वारा किया जाता है। अध्यापक का कार्य दूरदर्शन से संबंधित शिक्षण सामग्री को पुनर्बलन प्रदान करना होता है। दिल्ली दूरदर्शन केंद्र अकेले ही विभिन्न पाठ्यक्रमों एवं पाठ सहगामी विषयों पर 16 कार्यक्रम प्रति सप्ताह प्रसारित करता है। 3,00,000 से अधिक छात्र विद्यालयों में स्थापित दूरदर्शन सेट के माध्यम से इन कार्यक्रमों का अवलोकन करते हैं। सिनेमा। सिनेमा शिक्षा का लोकप्रिय सस्ता साधन है। इसकी लोकप्रियता दूरदर्शन से अधिक है। फिल्म एक यांत्रिक प्रक्रिया है जिसके चित्रों की छाया बड़े आकार पर पर्दे पर फेंकी जाती है। इनमें चित्र क्रियाएं और आवाज तीनों एक साथ संभव हैं। फिल्में शिक्षण का प्रभावकारी साधन है। इसके द्वारा शिक्षण रोचक, सरल और बोधगम्य होता है। फिल्में विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे 8 मिलीमीटर, 16 मिमी और 35 मिलीमीटर। शैक्षिक फिल्मों का मानक आकार 16 मिमी माना गया है, जबकि सिनेमा के फिल्मों का आकार 35 मिमी का होता है। फिल्मों को प्रदर्शित करने के लिए फिल्म प्रोजेक्टर व स्क्रीन की आवश्यकता होती है। स्क्रीन 3 प्रकार के होते हैं, ट्रिप पॉट, स्टैंड स्क्रीन, वॉल स्क्रीन और फिक्स्ड टाइप स्क्रीन। मूक फिल्मों में आवाज नहीं होती, चित्र और उनके हाव भाव दिखाई पड़ते हैं। मूक फिल्मों का लाभ है कि उन्हें शिक्षण की विभिन्न परिस्थितियों के अनुकूल बनाया जा सकता है और शिक्षक आवश्यकता अनुसार अपनी टिप्पणी दे सकता है। वाचिक फिल्मों में चित्र के साथ संवाद सुनाई पड़ते हैं। वाचिक फिल्मों का लाभ है उनमें दिखाई देने वाले दृश्य की यथार्थता बढ़ जाती है। मूल्य शिक्षा में सिनेमा फिल्मों की उपयोगिता। सामान्य चित्रों फिल्म के चित्रों में अंतर है। फिल्मों में प्रदर्शित चित्र गतिशील दिखाई पड़ते हैं। उदाहरण के लिए भूगोल में दिन रात, ज्वार भाटा, ज्वालामुखी, उद्गार, जल धाराओं तथा वर्षा आदि प्रकरणों को फिल्म के द्वारा सजीव ढंग से प्रदर्शित किया जा सकता है। तीव्र क्रियाओं को फिल्म के द्वारा मंद गति से देखा जा सकता है। सूक्ष्म पदार्थ जो सामान्य दृष्टि से दिखाई नहीं पड़ते, जिन्हें माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है, फिल्मों में पर्दे पर प्रक्षेपित किया जा सकता है, जिन्हें पूरी कक्षा आसानी से देख सकती है। फिल्मों के माध्यम से किसी तात्कालिक या प्रक्रिया को अच्छी तरह से देखा जा सकता है। पर्यावरण प्रदूषण के प्रभावों को किसी शैक्षिक उपकरण का प्रयोग कैसे किया जाए, इसकी जानकारी फिल्मों के द्वारा भी हो जाती है। भूतकाल में घटित घटनाओं को फिल्मों के माध्यम से देखा जा सकता है। सिंधु घाटी की सभ्यता, महाभारत का युद्ध, पानीपत का युद्ध, अतीत काल की घटनाओं का सजीव चित्रण फिल्मों के द्वारा संभव है। गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक और महात्मा गांधी आदि महापुरुषों की जीवन गाथा को फिल्मों के माध्यम से देखा जा सकता है। फिल्मों के द्वारा चरित्र निर्माण और अभिवृत्तियों का शोधन होता है। जीवन मूल्यों, आदर्शों और सद्गुणों को फिल्म के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। बच्चे उन्हें देखकर प्रभावित होते हैं और अपने जीवन को वैसा ही बनाने का प्रयास करते हैं। प्रौढ़ शिक्षा, अनवरत शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा एवं परिवार कल्याण, पर्यावरण संरक्षण संबंधित कार्यक्रम को पर बराबर फिल्में बनाई जाए तो इसके सार्थक परिणाम निकलेंगे। फिल्म सामाजिक कुरीतियों का निवारण में सहायक है। सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन करने के लिए फिल्में बनाई जाएं और उनका प्रदर्शन सार्वजनिक रूप से किया जाए तो यह मूल्य शिक्षा का सशक्त माध्यम हो सकता है। रेडियो। रेडियो पुराना और शिक्षा का एक दुर्लभ साधन है। इसके द्वारा चुनाव प्रसार, समाचार प्रसारण किया जाता है। आंतरिक और बाह्य संकटों से देश की रक्षा की जानकारी दी जाती है। पेट्रोल, डीजल, अन्य संकट के बारे में बताया जा सकता है। सांप्रदायिक उन्माद की समस्या को बताया जा सकता है। अन्य विश्वासों की समाप्ति के बारे में, महिलाओं और सुविधाविहीन लोगों की दशा और दिशा के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है। हीन भावनाओं के नियंत्रण के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है। आदि पर प्रसारण कर रेडियो ने सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय का कार्य किया है। समाज रुचि के कार्यक्रम, नाटक, कहानी, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम ने जन चेतना का कार्य किया है। पर्यावरण सुधार, परिवार नियोजन और कल्याण के कार्यक्रम, संगीत, लोकगीत, नाटक, लोकनाट्य, गृह लक्ष्मी, खेती बाड़ी के कार्यक्रमों ने निश्चित ही लोक चेतना को जगाया है। शिक्षाप्रद कार्यक्रम मूल्य शिक्षा की दृष्टि से बड़े उपयोगी हैं। ज्ञान विज्ञान की बातें, महापुरुषों की कहानियां, देश के महान संतों के प्रवचन मूल्य शिक्षा की दिशा में बड़े उपयोगी रहे हैं। मानव कल्याण की बातें संतों को सुभाषित वाक्य उच्च आदर्शों का उन्मेष करते हैं। यद्यपि दूरदर्शन नैतिक मूल्य और शिक्षा का सशक्त साधन हो सकता है, किंतु इतना तो कहना ही होगा, इसने उच्च बच्चों के चरित्र निर्माण में कोई भूमिका नहीं निभाया। आवश्यकता है कि रेडियो और दूरदर्शन को नग्नता और विज्ञापनों के चक्रव्यूह में नहीं उलझा कर रह जाना चाहिए। यदि हम रेडियो और दूरदर्शन द्वारा प्रसारण के लिए उपयुक्त व स्तरीय कार्यक्रमों का निर्माण व उपयोग करने में सफल हो जाएं, तो चलचित्रों के मूल्यों को उभरने की कोशिश की जाए तो मूल्यों की स्थापना में विलम्ब न होगा। किंतु अभी तक दूरदर्शन नग्नता को ही फैलाकर अनैतिकता और कामाचार को बढ़ावा दे रहा है। दूरदर्शन विभिन्न वस्तुओं का प्रचार करते समय नारियों के स्तन और नितंब अश्लीलता के साथ दिखाए जाते हैं। साथ ही कल एक विशेष प्रकार का अर्थहीन गीत चल रहा पड़ा है, जिसे गाती हुई नौ यौवनाओं की मुद्राएं लड़कों और लड़कियों में बिना समय काम भावना जगाते हैं। इतना ही नहीं, ऐसे गंदे चित्रों का प्रदर्शन किया जाता है जो भारत की संतति को विनाश की ओर ले जाया जा रहा है। सांस्कृतिक आदर्शों की होली जलाई जा रही है, अतः ऐसे प्रदर्शनों पर अंकुश लगाया जाना चाहिए।